फिर भी तो शरीर ही है ना, इसलिए थोड़ी सोचा जब तक पहुंचे हम ज्ञान चर्चा कर लें थोड़ा सा। आपको एक कहानी सुनाऊं? ठीक है, कहानी सुनाओ तो सबकी नींद खुल जाएगी। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को कि हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, मैं उस पर वो कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है कोई ने कभी सुनी होगी। एक डायमंड मर्चेंट था, वो डायमंड मर्चेंट थोड़ा सा जैसे फिलोसोफर होते ना, इस प्रकार का व्यक्ति था। तो एक बार वो अपनी मीटिंग में व्यापारियों के साथ बैठा हुआ था। तो जब वो मीटिंग कर रहा था तो उसका मैनेजर आया, उसने आके बोला कि मालिक एक डायमंड जो है ना वो खो गया है, मिलता नहीं है, और वो बहुत वैल्यूएबल था, बहुत कीमती हीरा था वो। तो वो जो डायमंड मर्चेंट था उसने अपनी आंख बंद की और आंख बंद करके एक मिनट के बाद खोली और उसने कहा वंडरफुल। अब उसको मैनेजर को सुन के तो बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन वो चुपचाप चला गया वापस। मीटिंग कंटिन्यू चलती रही, शाम होने को आई थी, मैनेजर वापस आया। मैनेजर वापस आया, उसने आके अपने मालिक को कहा कि मालिक वो जो हीरा खो गया था वो हीरा मिल गया है। उसने फिर आंख बंद की, एक मिनट के बाद खोल के बोलता है इट्स वंडरफुल, इट्स इंडीड वंडरफुल, ये वंडरफुल है, ये सचमुच वंडरफुल है। तो वो जो मैनेजर था और जो दूसरे व्यापारी थे वो भी सोचने लगे, आइए आइए ओम शांति, मैं कल शाम को रात को पूरा करूंगी इसको, ठीक है। आप सोचते रहिए वंडरफुल क्यों है। हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सतीश भाई, जो बहुत ही सभी के प्रिय हैं, माताएं हो, कुमार हो, कुमारियां हो, भाई हो, और हमेशा उनको सुनने के लिए चातरक रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सुनाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बाबा के ज्ञान को कैसे लाना है, और उनके पास कई साइंटिफिक लॉजिकल बातें होती हैं जो हमेशा मन और बुद्धि को अपील करती हैं, जो अच्छी लगती हैं, दूसरों को सुनाने में भी कन्विंस करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप हमारे बीच में आए हैं, हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए ये भी इनकी विशेषता है, सुबह अमृत वेले करने के पश्चात, मुरली मुरली के पश्चात अपना ओपीडी सब जगह चक्कर लगाना, और वहीं से ही सीधा यहाँ पर नीचे ट्रॉमा हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पर आए हैं। ऐसा ही है ना सतीश भाई, यहाँ आए हैं आईसीयू से सब राउंड आदि लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा भी कितना उनको एनर्जी देते हैं जो इस तरह से वो सेवाएं करते रहते हैं। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं उनको अभी अनुरोध करती हूँ कि जो आपका विषय है आज का अंतर्मुखता और बेहद का वैराग, इसको स्पष्ट करें। आदरणीय सतीश भाई,
एक मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद शुक्र। ओम शांति। अंतर्मुखता और बेहद का वैराग, अभी हमारा सभी का लक्ष्य क्या है? अभी हम सभी को संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए? बाह्य मुक्ता चाहिए कि अंतर्मुखता चाहिए? हमें अंतर्मुखता चाहिए ना। तो पहले जो बाह्यमुखी, जो बाह्यमुखता है ना, इससे अपने आप को काटना होगा। अपने जो बाह्यमुखता है, हमारे जो बाहर की, जो बाहर क्या क्या चीजें हैं, बाहर क्या क्या चीजें हैं, अंतर्मुखता माना अंदर, जो हमारा मुख है ना, मुख माना हमारा जो मुख माना जो बुद्धि रूपी मुख है ना, बुद्धि आंख भी होती है, मुख भी होता है ना, तो बुद्धि रूपी जो आंख कहे मुख कहे कहां लगा हो, अंदर देखता रहे, अंदर देखता रहे, अंदर में मैं कौन हूं, राइट ना। अंतर्मुखता की अगर परिभाषा कहें तो अंतर्मुखता माना एक सेकंड में देह से डिटैच, मैं शरीर आत्मा, ये अंतर्मुखता की परिभाषा है। एक सेकंड में अपनी देह, देह है ना, देह और देह की दुनिया, देह के स्वभाव संस्कार, देह का संबंध संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों से एकदम डिटैच हो जाए, डिटैच होके ये अनुभव करें कि मैं आत्मा अलग हूं या देह अलग है। एक सेकंड में देह से डिटैच, मैं शरीर ही आत्मा हूं, मैं आत्मा अलग हूं देह अलग है, ये है अंतर्मुखता, राइट। अब पर ये इसके बीच में बाधा क्या आती है हमारे अंदर, बाधा आती है भाया मुक्ता। आधा कल्प हम किसके अभ्यासी रहे हैं, भाया मुक्ता के अभ्यासी रहे ना, तो बाह्य मुक्ता के अभिभाषी रहे तो बाह्य मुक्ता में क्या क्या बातें आती है। एक तो अपनी देह, सबसे पहले तो अपनी देह सबसे ज्यादा बाह्य है ना, देह बाहर है ना, आत्मा के तो बाहर है ना, मैं आत्मा हूं ये देह बाहर है ना, तो हमारी जो हमारी बुद्धि रूपी आंख कहां जाती है, बुद्धि रूपी मुख कहां जाता है, ये देह को देखता रहता है ना, अपनी देह को देखते हैं और फिर देह के संबंधी, जितने देह के संबंधी हैं उनको देखते रहते हैं, उसी तरह बुद्धि चलती रहती है, उसी तरह मन में विचार चलते रहते हैं, है ना। और देह के संपर्क भी हैं, खाली देह के संबंधी नहीं, जो हमारा जो भी धंधा है, हमारा जो भी हम काम करते हैं, जिनसे हमारा संबंध संपर्क होता है, जिनसे लेन देन होता है ना, तो उनसे भी, उनका भी विचार चलता है, नहीं चलता है? जो हमारे कॉन्टेक्ट में होते हैं, कॉन्टेक्ट सेल्स होती हैं, तो देह का देह, देह के संबंध संपर्क और देह के स्वभाव, जो देह का स्वभाव क्या है, ये पांच विकार, देह की नेचर है, देहबान की नेचर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये फिर इसी के बारे में विचार चलते हैं। काम नहीं है, ब्राह्मणों में काम खत्म हो जाता है, किंतु काम विकार की बजाय कामनाएं आ जाती, इच्छाएं आ जाती है ना, कामनाएं भी तो इसका रूप है ना, इच्छाएं भी इसका रूप है ना, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति की तरफ उसकी बात सुनना अच्छा लगता है ना, तो ये जो है कुछ हमें चाहिए, कुछ हम और कुछ किसी से मिलना चाहते हैं, किसी का मैसेज आया कि नहीं आया उसको देखना चाहते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, क्या मैसेज आया, है ना, ये भी तो कामना है ना, ये भी तो एक हमारे अंदर, ये भी काम विकार का रूप है ना, तो काम क्रोध है ना, लोभ, लोभ माना कई बार पैसे का लोभ नहीं होता हमको, किंतु किसी का लोभ होता है, नाम मान शान का लोभ होता है ना, लोग मुझे पूछे, है ना, बहन जी मुझे पूछे, और लोग पूछे मेरा नाम, मेरा लोग कुछ तो नाम हो, लोग मुझे पहचाने तो सही, कम से कम मैं कहां से हूं, मैं कितने दिनों से सेंटर पे रहता हूं, कितने दिनों से बाबा का बच्चा हूं, बैच छोटे वाला है कि बड़े वाला है, इसके पास तो बड़ा है मेरे पास छोटा है, मेरे को एक बड़ा बैच मिल जाए, है ना, तो नाम मान शान का लोभ सबसे बड़ा लोभ है ना। बाबा ने एक बार कहा था, जितने महारथी है ना, महारथी कभी लंका कभी जलेगी, जब ये पूछ चलेगी ना, नाम मान शान की पूछ, मुझे पूछे है ना, तो ये पूछ जब तक नहीं जलेगी तब तक क्या बनेंगे है? जब तक रावण जलेगा, रावण नहीं जलेगा, रावण कहीं पूछ में ही पर से बैठा हुआ है ना, रावण की जब कहते हैं सारी करंट कहां पे है, है? पूछ में है, तो अगर ये पूछ खत्म हो जाए तो क्या होगा, लंका जल जाएगी ना, है? तो ये जो है फिर मोह, अटैचमेंट जो होती है ना, हमें अपने देह से तो अटैचमेंट होती है, किंतु फिर हमें बच्चों से अटैचमेंट, अपने युगल से अटैचमेंट है ना, जो लोग हमारी जो हमें महिमा करते हैं उनसे अटैचमेंट हो जाती है, जो हमें पूछते रहते हैं बार बार, कैसे हो मम्मी, खाना खाया नहीं खाया, क्या किया, कैसे हो, सिर दर्द तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा, दवाई खाई कि नहीं खाई, है ना, तो ये इनसे भी अटैचमेंट हो जाती है ना, ठीक है ना, और फिर अहंकार, ईगो, तो ये पांच जो है देह की नेचर है। देह जैसे हम आग के पास जाएं तो क्या महसूस होता है, गर्मी अपने आप लगती है ना, कि मांगनी पड़ती है, तो अपने आप को देह समझते ही ये विकार आएंगे, राइट। तो पर देह बाह्य है, तो देह, अब बाह्य मुक्ता, अगर हम बाह्य मुक्ता का रस हमें आधा कल्प का पड़ा हुआ है, कितने कल्प का पड़ा है, 2500 वर्ष का हमें क्या है, आदत पड़ी हुई है, ऑटोमेटिक है, देह भान में आना ऑटोमेटिक है, नहीं या मेहनत करनी पड़ती? मेहनत करनी पड़ती है? देह के संबंध याद आना ऑटोमेटिक है कि मेहनत करनी पड़ती? देह के संपर्क याद आना ऑटोमेटिक है ना? देह के स्वभाव भी ऑटोमेटिक है, ये पांच विकार ऑटोमेटिक है, मेहनत नहीं कर। जहां देवान आए ना, कोई भी याद भी आ गया ना, कोई संबंधी भी याद आ गया, माँ याद आई, बाप याद आया, माँ याद आई तो मुंह आ जाएगा, बच्चा याद आया तो मुंह आ जाएगा, युगल याद आई तो काम आ जाएगा, है ना? कोई बराबर वाला याद आ गया तो क्रोध आ जाएगा, है ना? कोई पैसे वाला याद आ गया तो लोभ याद आ जाएगा, है ना? कोई मेरी महिमा करने वाला आ गया तो भी लोभ आ जाएगा ना, अहंकार आ जाएगा, छोटा वाला हुआ तो अहंकार आ जाएगा, है ना? तो ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही देह के जो आदतें हैं ना, देह के जो संस्कार कहें आदतें, वो क्या है? आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या है? आलस्य, है ना? अलबेलापन, अरे आलस्य छोड़ ना, अमृत वेला तो सारा संगम ही बाबा कहते हैं अमृत वेला, आप 6 बजे करेंगे ना, 5 बजे करेंगे ना, नहीं तो नींद अभी देर से सोए तो 5 बजे उठते हैं ना, हमारी फ्लाइट 4 बजे की है ना, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे 5 बजे तो फ्लाइट मिलेगी ना आपको? नहीं मिलेगी, है ना? चली जाएगी ना, तो आपकी वेट करेगी ना, वो बहन जी नहीं आई अभी, वो भाई साहब नहीं आया अभी, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा बाद में जाएंगे। बस थोड़ी ना बस है क्या? बस वाला थोड़ा रुक भी जाएगा किंतु, हाँ जी, बस भी नहीं रुकती है आजकल तो, ना ठीक है? तो आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है ना, ठीक है? तो आलस्य नहीं कभी, केयरलेसनेस। मुरली तो हम क्लास में, वो मुरली आती है ना आजकल, पीएम टीवी पे आती है, वहीं सुन लेंगे ना, हमारे मोबाइल पे मुरली आती है, चलो मुरली वहीं सुन लेते हैं, नहीं? अलबेलापन, इंटरनेट पे मुरली देख लेंगे ना, पढ़ लेंगे, क्या बात है, इंटरनेट पे खाना भी खा सकते हैं ना, नहीं खा सकते, नाश्ता भी इंटरनेट पे कर लो आप, फोटो देखो हो गया नाश्ता, ना है ना? खाने की प्लेट देखो, अंकुरी देखो, दलिया देखो, रोटी सब्जी देखो, एक कप दूध, ग्लास का दूध देख लो, उसमें आता ना फोटो में सब आता है, लिख दो ऑर्डर करो 1 ग्लास मिल्क, है ना, वो देखो ग्लास मिल्क आ जाएगा भरा हुआ, है ना? तो आप ग्लास पी लो बस, दूध का ग्लास पी लो, और फिर जो भी चाहिए आपको, इडली लिखो इडली आ जाएगी उसमें, ना है ना? कंप्यूटर में डाला इंटरनेट और इडली, ना मसाला डोसा आ जाएगा, ढोकला आ जाएगा, ना खमन आ जाएगा, ना तो खा लो बस, इंटरनेट पे खा लो, है ना? नाश्ता हो गया, जो भी चाहिए आप ऑर्डर करो, तुरंत हाजिर है, ना? तो ऐसे खा सकते हैं ना। तो मतलब ये जो आदतें हैं ना, ये जो हमारी आदत आलस अलबेलापन, दूसरों में तो अपना दोष दिखाई नहीं देता है, जो मेरे से गलती हुई, इसने किया ना, मैंने ऐसा तब किया, ये ऐसा करती है ना, इसने मैंने ऐसा किया, तब मैं किया। बदलने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता, भय, जल्दीबाजी, प्रेशर में रहना, और चिंता करते हैं तो मतलब ये भी हमारा विकार है, चिंता भी विकार है, चिंता करना भी विकार है, भय भी विकार है, चिंता करना बहुत बड़ा विकार है। चिंता क्यों विकार है? चिंता बाबा के बच्चे और चिंता करे, बेफिक्र बादशाह ना, बाबा मिला, मैं आत्मा हूं, मर नहीं सकती, मेरा बाप मर नहीं सकता, और ड्रामा में जो होना है वही होगा, जो हुआ है वही होना था, और जो हो रहा है वही होना है, और जो होने वाला है वही होने वाला है, ठीक है? तो चिंता किस बात की करनी है? तो मतलब अगर हम चिंता करते हैं, रोते हैं, तो क्या इसका मतलब क्या है? हम बाबा के सच्चे बच्चे नहीं है, हैं सच्चे बच्चे? डरते हैं तो बाबा के सच्चे बच्चे हैं हम, नहीं ना? तो ये हमें समझने की बात है, डरना मतलब ब्राह्मणों का काम नहीं है। कोई कहे अभी आके तलवार लेके आए, आपका गर्दन उतारनी है, तो क्या करेगा? उतार लो भैया, उतारनी तो उतरने वाली को तो उतर जाएगी, नहीं उतरने वाली को तुम्हारा दिमाग अपने आप ही बदल जाएगा, नहीं? ठीक है ना? तो डरने की बात नहीं है ना, नहीं? प्रेशर में नहीं आना, ब्राह्मण कभी प्रेशर में नहीं आते, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये करना है, ये काम इस हिसाब से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो कल पहले हुआ था वैसे ही हो जाएगा ना, मुझे करना है बस इतना रखने का, है ना? और ईर्ष्या किसी से नहीं करना। तो देह की आदतें, तो ये जो 4 चीजें ना, और देह के पदार्थ जो होते हैं ना, देखिए जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसमें बुद्धि जाना, मकान में बुद्धि जाना, कार में बुद्धि जाना, पैसे में बुद्धि जाना, गहने में बुद्धि जाना, इन चीजों में बुद्धि जाना भी मतलब ये सब क्या है, ये भय मुक्त है। देह, देह के स्वभाव, देह के संबंध संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये चार चीजों में बुद्धि जाना माना भय मुक्त। अब कैसे, अब अंतर्मुखी का मतलब क्या है, अंतर्मुखी का मतलब देह की बजाय देही में बुद्धि जाए, मैं आत्मा हूं इसमें बुद्धि जाए, राइट। चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास रहे कि मैं कौन हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली ये भाई साहब आपके साथ वाले दो नंबर पे बैठे, भाई साहब आपके साथ दो नंबर वाले, सीधे होके बैठो, सीधे होके ये भाई साहब अलर्ट होके बैठो, अलर्ट होके, नहीं तो आपके कारण दो दो लोगों को नींद और आ जाएगी, है ना, है ना, नहीं, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन होता है ना, एक सोएगा दूसरा भी उसको दो तीन और आसपास, दो साथ वाले और दो पीछे वाले, पांच जने सो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं करना, अलर्ट होके बैठो। तो सुना आपने, तो क्या बताया, क्या कहा मैंने, अंतर्मुखी माना जो अंदर है उसको देखना है, उसको पहचानना है, उसको अनुभव करना है, राइट। तो अंतर, अंदर क्या है, अंदर है ये, इसका इसका प्रैक्टिस कैसे हुआ, अंतर्मुखी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करना, हर कर्म करते अभ्यास करने का, मतलब ऊपर से नहीं, ऐसे को अंतर्मुखता ऊपर से आ जाएगी, शिव बाबा डालेगा ऊपर से अंतर्मुखता का इंजेक्शन लगाएगा अंतर्मुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है, हमें चलते फिरते अभ्यास करना है, अपने आप से बातें करते रहो, क्या अभ्यास, क्या बात करो, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा यहां पर बैठी हूं, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, और दोनों ब्रेन ना, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इसके बीच में इस दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के मध्य में यहां पर, यहां से लगभग ढाई इंच अंदर, यहां से तीन इंच नीचे, वहां मैं, और मैं जो हूं वो ऊर्जा है, मैं कौन हूं, चैतन्य आत्मिक ऊर्जा हूं, ये शरीर तत्वों का बना है, पांच तत्वों का बना हुआ है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, और मैं जो आत्मा हूं वो क्या है, मैं कौन हूं, चैतन्य ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं, मैं फिजिकल नहीं हूं, इसको देख नहीं सकते। कल भी आपको याद होगा मुरली में बाबा ने कहा ना, बाबा ने कल कहा था ना कि आप आत्मा को दिव्य दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, है ना, परमात्मा को देख सकते, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अनुभव से जान सकते हो, ठीक है, देखना नहीं है ना, अनुभव से जान सकते, ये ध्यान रखना है। देखने का मतलब है हमें ज्ञान के तीसरे तरह से देखना, ज्ञान माना समझ, ये समझ मुझे आ गई कि मैं ये ऊर्जा, ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूं, राइट। अब ये समझ दिखाई देना, दिखाई दे रहा ना कि मैं आत्मा ये नहीं हूं, मैं तो ऊर्जा हूं, जैसे हम किसी को बोलते ना आम चख के देखो, अब आपने आम चखा, दिखाई दिया क्या, टेस्ट दिखाई दिया उसका, खट्टा मीठा टेस्ट दिखाई दिया क्या, चख के देखो, है ना, है अनुभव किया ना कि देखा आपने, ये फूल, फूल सूंघ के देखो, फूल सूंघ के देखा, क्या देखा, फूल देखा कि सुगंध देखी, इसकी सुगंध अनुभव की ना, ऐसे आत्मा को आप अनुभव कर सकते हो, राइट। कई लोग कहते हैं सितारा देख रहे हैं हम, तो सितारा चमक रहा है, सितारा चमक रहा है, वो भी एक गलत तरह की चीज है। बाबा ने कहा ये हमें ज्ञान के तीसरे से समझना है, समझ, ज्ञान ना समझ, हमें समझ आ गई कि हम ये नहीं है, हम एनर्जी ऊर्जा। कई लोग तारा ही देखते रहते हैं, बाबा कहते हैं कहावत है, भ्रुकुटियों के बीच चमकता है अजब सितारा, ये कहावत है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कहावत है, ऐसे नहीं कि सितारा चमक रहा है, राइट। ये भी समझने की बात है, कई लोग आंखों में, सिर में दर्द कर लेते, देखते देखते ना यूं करके देखते रहेंगे, ऊपर आंखें चढ़ा के माथे में, सिर दर्द हो जाएगा, कहते डॉक्टर साहब जब भी हम लोग पैसा जब देखते हैं ना, जब योग करते हैं सिर दर्द बहुत दर्द होता है, क्या करते रहते हो, कहते बाबा ने कहा सितारा देखते रहो, तो सितारा दिखता तो यानी हम कोशिश करते देखते रहे, देखने की कोशिश करते तो सिर दर्द हो जाता है, ऊपर भी सितारा देखते रहते हैं, ऊपर भी सितारा नजर नहीं आता, फिर बनाते हैं सितारा, फिर मिट जाता है, फिर बनाते हैं फिर मिट जाता है ना। ऐसा देखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है ना, राइट। बिजली के तार में बिजली देखने की आवश्यकता है क्या? अगर अगर दिखाई दे भी जाए, ये तार ये रॉड हटा दो, तांबे का तार आ जाएगा उसमें दिखाई, अगर बिजली दिखाई भी दे तो माइक जोर से बोलना शुरू कर देगा क्या? उसी स्पीड से बोलेगा ना। तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, देखने की चीज को देखने की क्या कोशिश करना, समझ आ गई मुझे, ठीक है, मैं आत्मा एक कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं, चैतन्य आत्मिक ऊर्जा हूं, राइट, चैतन्य बिंदु हूं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इन आंखों से दिखाई दे नहीं सकती है, इन आंखों से या मशीन से भी दिखाई नहीं दे सकती, किसी मशीन से भी दिखाई नहीं दे सकती है। तो इमेजिन क्यों करें हम, विजुअलाइज क्यों करें, उसके फैक्ट को समझे ना, सत्यता को समझ लें, समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई, है ना, राइट। और मुझ आत्मा से जो मैं चैतन्य बिंदु आत्मा हूं उससे साथ एनर्जी और निकल रही है, मतलब ये चलते फिरते महसूस करना है, राइट। अब जो ज्ञान माने समझ, क्या समझ आई? पहली समझ तो हमें ये रखनी है कि यही अंतर्मुखता है ना? पहली समझ आई कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, और मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं, चलाने वाला कौन? मैं आत्मा। और मैं आत्मा जो हूं वो परमधाम निवासी अति सूक्ष्म चैतन्य परम ज्योति बिंदु या परम ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की संतान, वो भी वो परमात्म ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है, वो भी एनर्जी है, एनर्जी का पॉइंट है, राइट। जैसे आत्मा ऐसे वो भी है, पर उसमें और उसमें मुझ में क्या फर्क है? वो पावर हाउस है, वो ओशियन है, सागर है ना, वो जो है ये वो सागर है, हम जो है हम स्वरूप हैं, वो सागर है, राइट। सागर कभी खत्म नहीं होता, सागर में कितना मर्जी पानी निकालो गर्मी में सूखेगा नहीं, बरसात में उसमें बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है। पानी सर्दी में ठंडा नहीं होता, सर्दी में ठंडा नहीं होता, समुंदर ठंडा हो जाता है क्या? सर्दी में ठंडा नहीं होता, गर्मी में पानी गर्म नहीं होता है। और जो तालाब होता है ना, तालाब का पानी सर्दी में ठंडा हो जाएगा और गर्मी में गर्म हो जाएगा, गर्मी में सूख जाएगा और बरसात में बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी बाहर निकल जाएगा, राइट। सागर में ऐसा नहीं होता, सागर सदा एक रस रहता है। तो सागर जो है वो सागर है सदा एक जैसा, एवर प्योर, जैसे आज की बोली था एवर प्योर है ना। और मैं आत्मा गर्मी आई तो सूख गई है ना, और ठंडी आई तो ठंडी हो गई है ना। तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब मेरा मेरी स्थिति जो है, मैं जब सत्युग में हूं सतो प्रधान सातों गुणों में भरपूर हूं, जब मैं द्वापर के शुरू में उसमें आई तो जो प्रधान माना आदि एनर्जी हो गई, और कलयुग के अंत में तो क्या हुआ, ना के बराबर रह गई एनर्जी, नाम मात्र जैसे ना, जस्ट एनएफ टू, इतनी एनर्जी रह गई सिर्फ शरीर चलता रहे बस, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई तो शरीर चलना ही बंद हो जाता है। आत्मा यहां बैठ के क्या करती है? आत्मा बैठ के मन बुद्धि संस्कार तीनों को पोषित कर रही है, किससे? सात गुणों से, ज्ञान से, पवित्रता से, शांति से, रूहानी प्रेम से, अतीन्द्रिय सुख से, आनंद से, शक्तियों से पोषित कर रही है, बुद्धि को भी कर रही है, मन को भी कर रही है, और संस्कारों को भी कर रही है, फिर पांचों कर्मेंद्रियों को भी कर रही है। आंखों में सात गुण भर दिखाई, आंखों से ज्ञान मतलब समझ आए, ज्ञान मतलब समझ आए, क्या समझ आए? कि ये सामने वाली आत्मा है, ये जो है ना ये भी आत्मा है, ये मेरा बेटा है ना ये भी आत्मा है, बेटी है ना वो भी आत्मा है, ये है ना आदमी ये भी आत्मा है, ये पत्नी है ना ये भी आत्मा है। तो ये समझ अंदर आ गई, राइट। और हम एक उस पिता के संतान है, वो पिता हमारे याद नहीं होता सत्युग में, क्योंकि संस्कारों में भरा रहता है पिता, परमात्मा के गुण हमारे संस्कारों में भरे रहते हैं, है ना। और डी फॉर ड्रामा, वहां पर हम ऐसे नहीं कहते कि ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, बहुत अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा है, नहीं, वहां पर हम क्या, हमें समझ आइए संस्कारों में है, इसलिए हम क्वेश्चन रेज नहीं करते, जो हुआ अच्छा हुआ बोलते नहीं है, हमारे अंदर समझ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, समझ है जो होने वाला है अच्छा होने वाला, ये हमें संस्कार के रूप में है, है ना। तो ये जो है वहां पर ऑटोमेटिक हमारे अंदर भरा हुआ है, राइट। तो अभी जो है हमको ये अभ्यास हमको करना है, क्योंकि जब सत्युग में आए थे हम भरपूर थे, अभी सातो एनर्जी नहीं बन, तो अभी हमें क्या करना है, ये फाइलें जागृत करनी है, ये नई स्मृति जागृत करनी है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते ये एबीसीडी का अभ्यास हम कहें ना, एबीसीडी, जो एबीसीडी ही अगर हमारे हमारी हमारी बुद्धि में, बुद्धि और मन में अगर हम एबीसीडी आ जाए तो ये अंतर्मुखता है, राइट। अर्थात ये ज्ञान एबीसीडी में ना ज्ञान, ये मुरली जैसे आज की मुरली थी, यही साधन अंदर बजती रहे। परमात्मा के महावाक्य हैं, बाबा हमेशा क्या बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है वो बात करेंगे, सी फॉर कनेक्शन संबंध, बाप टीचर सतगुरु बंधु सखा साजन जो भी अलग संबंध है बाबा उसके बारे में बात कर, डी फॉर ड्रामा, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की बात करेंगे। तो बेसिकली बाबा तो यही बात करते हैं। तो इसको हम जितना मुरली बेसिकली कुछ और नहीं है, मुरली यही है। तो जितना इस मुरली का हम बार बार मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाते हैं हम अंतर्मुखी होते जाते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें जैसे अभी पुरुष भी कर रहे हैं तो ये अपने हर चीज में हमें अटेंशन होना चाहिए, चलते हुए खाना खाते हुए अपने आप से बात कर सकते हैं ना कि मैं कौन खाना खा रहा है, शरीर थोड़ा ना खाना खा रहा है, मैं आत्मा खाना खा रही हूं इस शरीर के द्वारा, मैं आत्मा शरीर को पेट्रोल दे रही हूं, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल देता हूं। ऐसे ही ब्रश कर रहा, ब्रश कौन कर रहा है, कभी डेड बॉडी ब्रश करती है क्या, है ना, डेड बॉडी कभी खाना खाती है क्या, चलती डेड बॉडी कभी चलती देखी है हमने, मुर्दा कभी चलता देखा है, तो मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा खा रही हूं, मैं आत्मा खाना, अच्छा कभी डेड कभी मुर्दा कभी खाना बनाता है क्या, तो मेरा ये अभ्यास कि मैं आत्मा खाना बना, ये अटेंशन रखना बहुत मुश्किल काम है कि तू यही अभ्यास हमें कर सकते हैं ऐसे अभ्यास, गाड़ी कभी मुर्दा गाड़ी चलाते देखा है आपने कभी, तो मैं तो ऐसा अभ्यास करता हूं, मैं जो बता रहा हूं मैं करता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कभी मुर्दे कभी कौम करते हैं क्या, कंगा कंगा करते हैं क्या, शीशे में देखते हैं क्या, शीशे में देखते देखते भी अपने आप से बात करो कि मैं कौन देख रहा हूं, शीशे देखने वाला कौन है, ना छोटी बात है ना, कर सकते हैं ऐसे। फिर हमें ऐसा अभ्यास हो जाएगा चलते फिरते कि मैं आत्मा, राइट। तो जितना यह अभ्यास बढ़ता जाएगा अंतर्मुखता, तब अंतर्मुखता की डेफिनेशन क्या बताई शुरू में जो बाबा की मुरली में लिखी हुई 72 की मुरली में, अंतर्मुखता माना एक सेकंड में दे के सम दे क्या, एक सेकंड में दे से रिटैच, मैं शरीर आत्मा, एक सेकंड में दे से रिटैच, मैं शरीर, मैं आत्मा अलग हूं शरीर अलग, तो ये चलते फिरते अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। और जो अंतर्मुखी होगा वो एकांतवासी बन सकता है। एकांतवासी का मतलब क्या, एक के अंत में खो जाना, एक कौन, शिव बाबा। जो अपने को आत्मा समझ रहा होगा, जो आत्मा समझने का इसको अभ्यास होगा गहराई से, वो चलते फिरते उठते बैठते क्या रहेगा, एक के अंत में खोया रहेगा। एकांत माना शिव बाबा, शिव बाबा का अंत, शिव बाबा का अंत क्या है, एक कांत, एक शिव बाबा माना ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर का अंत क्या है, ज्ञान सागर का अंत क्या है बताओ, बिंदु है ना, ज्ञान का क्या है, ज्ञान है क्या, अभी संडे की मुरली थी ना, आप कौन है, बिंदु, बाप कौन है, बिंदु, ड्रामा में जो हो गया, जो हो रहा है, जो होने वाला है, बिंदु, तो बिंदु हुआ ना, तो ज्ञान सागर का अंत क्या हुआ, बिंदु। तो मैं आत्मा बिंदु, बिंदु बाप के, देखो तो ज्ञान सागर का, ज्ञान का बेसिकली अंत है बिंदु, पवित्रता का सागर उसका अंत क्या है, बाबा पवित्रता का सागर है ना, उसका अंत क्या है बोलो, जब मैं आत्मा अपने आप को मैं आत्मा बिंदु समझता हूं, दूसरा भी बिंदु नजर आता है, तो पवित्रता का अर्थ होता है अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए दूसरों के सत्य स्वरूप को देखते हुए सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, राइट। अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए दूसरों के सत्य स्वरूप को देखते हुए सत्य स्वरूप में एक दूसरे से व्यवहार करना, हमारा कंडक्ट जो होना चाहिए सत्य स्वरूप का होना चाहिए, ठीक है, ये पवित्रता है। तो जितना इस एबीसीडी को हम रिवाइज और रियलाइज करते रहते हैं बार 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 बार, बाबा ने कहा था एक बार मुरली में कि इसको रियलाइज करो, अनुभव करो, एबीसीडी को मतलब ज्ञान को अनुभव करो, आत्मा को अनुभव करो, बाबा को अनुभव करो, बाप से एक संबंध को अनुभव करो। तो अगर हम ऐसा अनुभव करते हैं, इस जो अनुभव हुआ और ड्रामा को अनुभव करो, अभी कपरदान था ना परसों का, साथी और साक्षी, याद है ना, साथी और साक्षी। तो एबीसी, एबीसी में आत्मा बाबा कनेक्शन, अगर मुझे बाप से हर संबंध की अनुभूति होगी, मतलब बाप के साथ की अनुभूति होगी निरंतर, हर संबंध की अनुभूति होगी, साथी की अनुभूति होगी, तो फिर मैं साक्षी बन सकता हूं ड्रामा से, राइट। अगर साथी नहीं तो साक्षी नहीं बन सकते, फंस जाते नहीं तो मैंने, नहीं ऐसा नहीं, तो कोई ना कोई संबंध की अपेक्षा किसी से रखी ना तो वहां फंस जाएंगे। अगर बाप से हर संबंध का अनुभव कर लिया तो क्या होगा, तो जब भी कुछ चाहिएगा तो क्या होगा, कौन याद आएगा, बाप याद आएगा। नहीं तो नहीं, नहीं बाप के पिताजी तो ठीक है, माँ भी ठीक है, बाप भी ठीक है, टीचर भी, सदगुरु भी ठीक है, सखा नहीं है, सखा, सखा फिर दोस्त में फंस जाएंगे, साजन में फंस जाएंगे, सजनी में फंस जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर ठीक है, बाप सात आठ संबंध बाबा से कर लिए, डॉक्टर का संबंध नहीं बनाया तो डॉक्टर में फंस जाएंगे, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसी से मेरी दवाई काम करती है, ये डॉक्टर ही के पास जाना पड़ेगा, नहीं फिर डॉक्टर याद आएगा। बाप से डॉक्टर का भी संबंध, हमारा सर्जन का संबंध बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए। कभी भी सिर में दर्द हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट में दर्द हो जाए, एसिडिटी बन जाए, गैस बन जाए, कुछ भी हो जाए, कौन याद आना चाहिए, डॉक्टर याद आना चाहिए, शिव बाबा याद आना चाहिए, नहीं। कभी कभी यूज किया आपने शिव बाबा को एज ए सर्जन, किया सिर दर्द हो तो कभी यूज किया, मैंने शायद आपको नहीं बताया होगा, मुझे एक बार, मुझे हार्ट का प्रोग्राम था, हार्ट का जो प्रोग्राम था ना, जिस कैट प्रोग्राम कहते हैं, सीएडी प्रोग्राम कहते हैं, तो मैं एक बार इतना थक गया था, मतलब मैं सारा दिन काम किया, अब हॉस्पिटल में भी पेशेंट देखता रहा सारा दिन, उस समय हॉस्पिटल में प्रोग्राम होता था, माउंट आबू हॉस्पिटल में हम लोग देखते थे प्रोग्राम, तो सारा दिन पेशेंट नीचे भी आईसीयू में भी देखता रहा, वार्ड में भी देखता रहा, मां नीचे कैजुअलिटी में देखता रहा, और उसके बाद फिर वो लेक्चर भी लेने थे, क्लास भी लेनी थी, पेशेंट भी सीरियस थे, सारी रात में मैं पेशेंट देखता रहा, मतलब सारे, अभी एक कमरे में जाऊं फिर दूसरे कमरे में, वहां से अभी इससे निकला फिर दूसरे की तकलीफ आ गई, उसकी तबियत खराब है, फिर उसकी तबियत खराब है, फिर उसकी तबियत खराब है, तो मैं तीन बज गए थे ऐसे ना, दिन में भी एक मिनट लेटा नहीं, आराम नहीं किया, और रात को भी मैंने तीन बजे तक मैं काम करता रहा, तीन बजे कमरे में आया, तभी मुझे याद है साढ़े तीन बजने वाले हैं, तो अभी तो उठ के फिर मुझे मुझे मृत्युरा भी कराना है, फिर उसके बाद मुरली होएगी, फिर उस क्लास करानी, क्लास भी मुझे करानी है, मुझे लेक्चर भी लेने हैं सारे, फिर मेरे लेक्चर भी सारे मेरे ही थे, तो मैंने बाबा को कहा बाबा आज तो बहुत थक गया, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा, सिर में भी दर्द, पैरों में दर्द, हाथ सारी बॉडी में दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ, आंखें भी दुख रही थी, पेन हो रही थी आंखों में, तो मैंने कहा आधा घंटा सोऊंगा तो भी तो आधे घंटे में उठना पड़ेगा ना बाबा, आज तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। फिर मेरे को एकदम याद आया दादी प्रकाशमणि थी ना, दादी प्रकाशमणि कहा करती थी कि गुप्ता जी बाबा जब मैं थक जाती हूं तो बाबा मेरी मालिश कर देता है, बाबा मेरी मालिश कर देता है, तो मुझे याद आया ऐसे, तो बाबा दादी की बात याद आई, मैंने कहा बाबा आप दादी की मालिश करते हो, मेरी नहीं कर सकते, है ना। तो मैं ऐसे बेड पे बैठा था ना, और तभी मैं देखा ऐसा जबरदस्त वो शुरू हुआ अंदर, जैसे यहां से कुछ ऐसे अंदर हो रहा था, यहां पर कुछ हो रहा था, फिर यहां पे हो रहा हुआ, फिर यहां पे हुआ, फिर यहां पे, फिर ऐसे सारी बॉडी में ऐसे, मतलब तो 30 सेकंड में शायद हो गया होगा, पूरा मिनट भी नहीं लगा होगा, घड़ी में तो नहीं, ये तो टाइम और स्पेस से परे की चीज है ना, इसमें टाइम और घड़ी देख नहीं सकते, है ना। अगर टाइम घड़ी देखते रहो तो फिर तो होगा ही नहीं, है ना, वो फीलिंग ही नहीं होगी, तो वो जो है ना बस मतलब समझो आधे मिनट में मेरी पूरी बॉडी में से ऐसे मालिश हो गया, और मैं एकदम से फ्रेश हो गया, मैं इतना फ्रेश हो गया जैसे कि मैं एकदम मैं पूरा नींद करके उठा हूं, मैंने काम भी कुछ नहीं किया हो, और फिर सारा दिन काम किया मैंने, जरा भी थकावट नहीं हुई। तो ये जो है बाबा, कोई तकलीफ भी हो ना, कोई भी तकलीफ हो, अब जैसे मुझे क्या होता, मुझे हार्ट की तकलीफ है ना, तो हार्ट की तकलीफ है, मेरी हार्ट की तकलीफ बाबा ने ठीक की, हालांकि मेरे को मुझे कहा था अमेरिका जाके ऑपरेशन कराओ, है ना, हार्ट की दीवारें बहुत मोटी थी, तो कहा हार्ट का ऑपरेशन अमेरिका में होगा, उसके बाद भी लोग मर जाते हैं, 60% सक्सेस रेट होता है उसका, बाद में बहुत दवाइयां खानी पड़ती, पेस मेकर लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैंने कहा मुझे नहीं कराना, मैं अपने बाबा से कराऊंगा, सुप्रीम सर्जन से कराऊंगा, तो बाबा ने ऑपरेशन किया ना, जो काम कोई नहीं कर सका बाबा ने किया है ना, वो सूली जैसी बीमारी थी, मुझे कहा दो साल में आप मर जाओगे, दो साल मैक्सिमम है आपके। मेरे जो फ्रेंड थे मैं जानता हूं, मैं खुद भी ऐसे हार्ट स्पेशलिस्ट को मैं बता सकता था कि मैं भी जानता था कि मर जाए किसी टाइम भी, दो साल के अंदर तो कभी भी मर जाएंगे, दो साल के बाद कोई जीता नहीं ऐसे पेशेंट, 97 की बात है। तो मैं तो उसको कहा मतलब, तो मैंने बाबा का बाबा भले मैं तैयार, आई एम रेडी है ना, तो मैं अगर आवश्यकता नहीं है तो भले बुला लो, कोई हर्जा नहीं है ना। तो बाबा ने ठीक किया ना। तो सूली जैसी बीमारी क्या बन गई, कांटा बन गई, कांटा भी क्या बन गया, फूल बन गया है ना। सचमुच में देखो तो बाबा कैसे कर देता है ना। फिर मुझे मेरे आंख का ऑपरेशन हुआ, ये आंख है ना इसमें गांठ थी, एक ट्यूमर था यहां पर आंख के अंदर नर्व के ऊपर, तो उसका ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन किया तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा इसका क्या करूं मैं, ये गांठ हो गई। बाबा ने कहा बच्चे उस डॉक्टर से हिसाब किताब है, वहां पहुंच जाओ। हैदराबाद गया तो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके उसने वो नर्व ही काट दी। वो नस होती ना जो ऊपर से ऐसे पूरा सिर को सप्लाई देती है, करंट यहां तक सप्लाई देती, वो नस ही काट दी। तो डॉक्टर ने नस काट दी तो गांठ भी निकाल दी, और नस करके तो आधा सिर मेरा सुन हो गया। आधा सिर 2.5 महीने के बाद मुझे करंट लगने लगे, बड़ी जोर से करंट होते ना, जिसको हम टाइजनल निरलजिया कहते हैं इंग्लिश में। आधा सिर में बहुत करंट लगते हैं जोर से, ऐसे तो ऐसे करंट लगते हैं जैसे कि कोई काट रहा है तलवार से ना, बहुत सीवियर पेन होती है। लोग जिसको दर्द होता है वो लोग दीवार में सिर मार मार के, इतने जोर के पेन होते हैं दीवार में सिर मारते हैं लोग ना। दवाई में दवाई खानी पड़ती है, दवाई के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, आदमी मतलब एफिशिएंटली कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग ना, बहुत फिर प्रॉब्लम होती है, दिमाग मेमोरी भी ब्लंट हो जाती है। तो मैंने बाबा से जिस रात को मुझे दर्द हुआ, लगभग 11 बजे के आसपास दर्द शुरू हुआ था रात को, आज 2008 की बात है, शायद कौन सा महीना था, मई का महीना रहा होगा शायद। तो मेरा जनवरी में ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब जब मैंने ये कहा तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या करूं, बाबा दवाई शुरू कर दूं कल सुबह से, कल सुबह दवाई मंगा लेता हूं, नहीं तो अभी मंगा लेता हूं दवाई, तो रात को भी मैं हॉस्पिटल में फोन करूंगा दवाई आ जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, फिर मैंने कहा, मेरे मन में संकल्प तभी आया, मैंने कहा बाबा सुबह सुबह 4 बजे पूछूंगा। तो मैं 4 बजे मैं ऐसे ही बैठा रहा, मतलब नींद नहीं आई, दर्द हो रहा था बड़ी जोर से, एक पैरासीटामोल खा ली, उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। तो फिर एक दूसरी टैबलेट आती है वो, उसमें थोड़ा पेन किलर होता है, वो खाई, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं 3:30 बजे अमृत वेला शुरू किया, बाबा से कनेक्शन हुआ, बाबा से पूछा बाबा क्या करूं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो तुम्हें मैंने गिफ्ट दी है। मैंने कहा कौन सी गिफ्ट दी है, गिफ्ट है कोई, बस सारी रात जाग रहा हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम जितनी देर मेरी याद में रहोगे तुम्हें दर्द नहीं होगी, ये वरदान है तुम्हें, जितनी देर मेरी याद में रहोगे अंतर्मुखी रहोगे तुम्हें दर्द नहीं होगी, और जैसे तुम बाह्यमुखी बनोगे, तुम बाहर उस किसी बातचीत में आओगे, उसके असर में आओगे, तुम्हें दर्द शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। तो मैंने फिर तब से अभ्यास करना शुरू किया। अब भी जब कभी मैं किसी बात की बाह्यमुखता में आऊं, थोड़ा जल्दीबाजी में आऊं, थोड़ा सा प्रेशर में किसी बात की मैं आ जाऊं, कोई बात का डर लगा लूं अपने मन में, किसी चिंता कर लूं कोई बात की, ये बताया मैंने, जरा सा आलस कर लूं अमृत वेले में, मुरली में, कोई बात में, इसलिए मैं लिखता रहता हूं, मुरली भी लिखता रहता हूं, पढ़ता भी रहूंगा, सुनता भी रहूंगा, ताकि मेरी बुद्धि कहीं ना जाए, है ना। कई लोग तो कहते हैं इतना क्यों लिखते हैं आप क्यों करते, लिखने की आवश्यकता, मुरली आपकी जेब में होती है, मुरली आपके पास होती, लिखते क्यों हो फिर आप, है ना। तो मैं इसलिए करता हूं ताकि मेरी बुद्धि ना कहीं और जाए नहीं, क्योंकि दर्द शुरू हो जाएगा। वॉकिंग करता हूं, वॉकिंग करते समय मुरली पढ़ता रहता हूं, मुरली पर मनन चिंतन मंथन करता रहता हूं, बुद्धि को अंदर लगा के रखता हूं। पेशेंट देखते देखते भी कोशिश करता हूं कि मेरी बाबा बुद्धि अंदर रहे, क्योंकि अगर दर्द अगर मैंने थोड़ा सा बाहर देखा, पेशेंट को भी देखा, तो मेरा दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, है ना। तो सुना कितना फायदा हुआ, गिफ्ट है कि बताओ क्या है, एक कर्ज है कि गिफ्ट है, वरदान है कि श्राप है, वरदान नहीं। तो शिव बाबा से तो कोई बीमारी भी, ऐसी बीमारी भी ठीक कर सकते हो ना, नहीं कह सकते। हिसाब किताब को तो बाबा बताएगा, बच्चे उसके पास चले जाओ, उससे तुम्हारा हिसाब किताब टच करेगा, बच्चे उसके पास चले जाओ, क्योंकि आज के इंसान को डॉक्टर की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं डॉक्टर के बारे में बताया। सुप्रीम सर्जन है ना, तो सुप्रीम सर्जन से राय, उसकी राय के बगैर मत करो। किसी से कुछ पूछना है तो मेरा किसी से भी कुछ पूछना है, क्लास में ही पूछने की उतनी, किसी भाई बहन से पूछने की आवश्यकता नहीं। मुरली समझ नहीं आई, पढ़ो उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, उसी पॉइंट को 40 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगी। बाबा से पूछो, बाबा इसका मतलब क्या है, इसका इस मुरली के पॉइंट का मतलब क्या है, आपने क्यों कहा यह बात, इसका क्या अर्थ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, चिंतन करते जाओ, मंथन करते जाओ, समझ में आ जाए। किसी और का चबाया हुआ खाना तुम क्यों खाते हो, अच्छी बात है क्या खाना, अपने दांत नहीं है क्या, मन और बुद्धि दो दांत है ना, मन और बुद्धि ना, ऊपर वाला जबड़ा मन बुद्धि है, नीचे वाला जबड़ा मन है ना, तो दोनों को चलाते रहो ना, नहीं चलाते हो, नहीं एक सूत्र नहीं व्हाट्सएप पे आएगा ना, मनन चिंतन, उस पे देख लेते पॉइंट है ना, उसके वो आप काम नहीं आएंगे, उसने निकाले जिसने मेहनत की है, तुम अपने निकालो ना। मैं कभी नहीं देखता, मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूं है ना, मैं सिंपल वाला फोन यूज करने को, अभी मेरे को लेना पड़ा जबरदस्ती, मेरा सिंपल वाला फोन खराब हो गया, पर मैंने सिर्फ व्हाट्सएप नहीं डाला है ना, कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ लाल बटन हरा बटन नहीं है यूज करता है ना, ईमेल नहीं करता हूं, फेसबुक पे नहीं जाता हूं, किसी पे नहीं जाता हूं, ठीक है, ये अंतर्मुक्त है ना, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जाना ये भी बाह्यमुक्त है। कई सोचते बाहर से मैसेज आएगा, वो मुझे गुड मॉर्निंग करेगा, ओम शांति करेगा, अरे ओम शांति की तुम्हें क्या आवश्यकता है ना, आज मुरली में था ना, आत्मा का सर्वधर्म शांति है ना, गले में पड़ा ना हार, तो शांति कि बाहर के व्हाट्सएप में क्यों ढूंढते हो, वो मुझे विश करे, गुड विश करे है ना। एक बाबा से सुबह सुबह गए ना, जिस दिन बर्थडे हो उस दिन बाबा के पास सुबह सुबह जाए, अमृत वेला बाबा से मना के आ गए, बर्थडे केक काट के आ गए, ऊपर ही खा के भी आ गए है ना, बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इतना सारा बेसन वो मैदा लगाओ, फिर पेट खराब करो, उसका अपनी शुगर नहीं बढ़ेगी, दूसरे की जिसका बेचारा किसको दो शुगर उसकी बढ़ेगी, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नहीं ऐसा, टाइम वेस्ट होएगा, गैस नहीं, चीनी खराब होएगी है ना, आपकी हेल्थ खराब होएगी है ना, क्या ख्याल है, समझ में, अंतर्मुखता क्या है, ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मुश्किल माताएं कह रही नहीं मुश्किल है ना, नहीं ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, अंतर्मुखी ही सदा सुखी कहते हैं ना, हर चीज का टेस्ट बाबा से लो, और ऐसा जो अंतर्मुखी है वो सदा सूक्ष्म वतनवासी है, अंतर्मुखी माना शुद्ध संकल्प चल रहे हैं ना, जिसके शुद्ध संकल्प चल रहे हैं वो सूक्ष्म वतन में रहता है, सूक्ष्म माना पवित्र दुनिया में रहता है, पवित्र बुद्धि और पवित्र मन, जिसकी पवित्र बुद्धि हो गई, पवित्र मन हो गया, सूक्ष्म वतनवासी, इस प्रोसेस से हमारी सूक्ष्म बुद्धि, पवित्र बुद्धि और पवित्र मन हो जाएगा, संस्कार आप ही होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे, संस्कार क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसी आधार पे होगा ना, बुद्धि और मन के आधार पे होंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म पवित्र होते जाएंगे, ऐसे हम संपूर्ण बन जाएंगे, ठीक है। तो एकांतवासी का अर्थ, मैं तो ये बार बार अभ्यास करता हूं एकांतवासी का, एक के अंत में खो गया, जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति, मैं देह से एक सेकंड में देह से अटैच, मैं शरीर आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा, फील करना मैं एनर्जी हूं, और फिर एक ये एनर्जी मैं आत्मा एनर्जी, अब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में, ज्ञान सागर क्या है, बिंदु है ना, पवित्रता का सागर क्या है, पवित्रता माना है बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, हम सब बिंदु, एक बाप बिंदु, बाप की संतान, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वही है पवित्रता। शांति क्या है, बिंदु। रूहानी प्यार क्या है, बिंदु। जब अपने को बिंदु देखते हैं, दूसरों को बिंदु देखते हैं, तो हमारा रूहानी प्यार, हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, किसी ने कुछ कर भी दिया तो क्या हुआ, किसी ने धोखा दिया, तकलीफ दी, दर्द दिया है ना, तो उसने क्या किया, जो मैंने किया था उसने वापस कर दिया, ठीक है, तो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है, जिसने भी मेरे साथ गलत किया, बाबा कहता है नामा में कोई दोषी नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है, है कोई दोषी, किसने आपके 5 लाख रुपए लिए वापस नहीं किए, तो दोषी है क्या वो, है पक्की बात है, अभी सोचना नहीं है, कभी आगे से कोर्ट केस हो तो बंद कर देना, ठीक है, कर सकते हैं बंद, कोर्ट केस हो तो बंद कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी क्या है, 2-3 साल में कितने कमा लेगा वो, उसको उतना ज्यादा दुख होगा जितना ज्यादा कमाएगा। हम कम कमाते तो हमें दुख भी कम होगा, है ना। नहीं तो अभी ध्यान रखने का है सचमुच में, बिल्कुल जरा ही प्यार का मतलब रूहानी प्यार मतलब एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर एवरीवन, अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर एवरीवन, मतलब बिना शर्त के और आदर के साथ एक्सेप्ट कर लो सबको, कोई कैसा भी हो, किसी ने धोखा दिया, दुख दिया, दर्द दिया, कुछ हमें कुछ भी गलानी की, हमारी निंदा कराई, बेइज्जती कराई, यहां वहां कुछ हमारे लिए उल्टा सीधा भी बोला, तो भी वो हमारे पास आए हम उसके लिए भी पॉजिटिव रहें, उसकी भी केयर करें, उसको भी आदर दें, क्योंकि जो भी अभी हुआ है वो उसने हमने हमारा ही किए कर्मों का फल है। हमने मैंने एक बार एग्जांपल बताया था ना आपको, जो पता है डी डी फॉर ड्रामा, हर आत्मा इस जना इस ड्रामा में क्या है, एक्टर है, और अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट बजा रही है इसलिए अभी तक, और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, दिया है अभी तक, दे रहे हैं और देते रहेंगे, इसलिए अभी तक जो कुछ भी हो अच्छा हुआ है, अभी तक जो कुछ भी हो अच्छा हुआ, किसी ने धोखा दिया, दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, किसी ने महिमा की, वो क्या हुआ, वो कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार, कर्मों के अनुसार नहीं, जैसे मैंने एग्जाम्पल देता हूं ना कि 1000 रुपए का ब्याज कितना होता है, 100 रुपए पहले हमने 100 साल पहले किसी से 1000 रुपए उधार लिया और हम मर गए, हमने शरीर छोड़ दिया, अभी वो हमारे पास हमारा युगल बन के आ गई, या बन के आ गया, या बच्चा बन के आ गया, या दोस्त बन के आ गया, संबंधी बन के आ गया, तो क्या होगा, अब 1000 रुपया उसका ब्याज कितना हो गया, 52,48,00,000 है ना। हमने एक बार पूछा था, कहते पहले पिछले जमाने 20-25-30% भी ब्याज होता था, है ना, और अभी 30 साल से ब्याज कम हुआ है, 10% से कम हुआ है, उसके पहले ब्याज बहुत था, 5 साल में डबल होता था हर चीज, उसके बाद 3 साल में डबल होता था ना, मेरे पिताजी बताते हैं, फादर मेरे बताते थे, दादाजी बताते थे, पहले 30 साल में तीन साल में डबल हो जाता था पैसा, है ना, अभी फिर बाद में 5 साल में हुआ, और अभी 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 7-8 साल में डबल होता है, अभी कुछ साल से ऐसा हुआ है ना, तो अभी जो है मतलब अभी पर 70 साल में इतना अभी तो ज्यादा नहीं बढ़ता, पहले बहुत बढ़ता था, तो 52,48,00,000 रुपया तो इतना देना पड़ेगा आपको, इसलिए आप जितना मर्जी दोगे ना उसको वापस, तो भी वो खुश नहीं होगा, आपका बेटा आपका बेटे को देते रहो सब कुछ करो, आप कुछ मत, आप खाना पीना भी छोड़ दो, उसको ही देते रहो सब कुछ, तो भी वो खुश नहीं होगा, क्योंकि कितना दिया, 1 करोड़ दिया, 1.5 करोड़, 2 करोड़, बाकी कौन देगा, 50 करोड़ कौन देगा, सुना आपने, तो ऐसे ही एक गाली दी हो कितनी गाली मिलेंगी बताओ, सोचो 100 साल पहले एक गाली दी होगी कितनी गाली, सुबह शाम नाश्ता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, डिनर करने की आवश्यकता, पेट भर के गाली खाओ, नहीं दुख दिया हो कितना दुख पड़ना, कितना दुख दिया होगा, एक थोड़ा सा दिया हुआ इतना सारा मिलेगा, कई लोग कहते इतना दुख हमसे आते, इतना दुख से आते, दिन रात देखो यहां भी दुख, यहां भी दुख, यहां परेशानी, क्योंकि हमने किए हुए कर्म है ना, सुना आपने, तो ये जो है राजयोग से क्या होता है, राजयोग से ब्याज माफ हो जाता है, ठीक है, मूलधन देना ही पड़ेगा, उसको भी इतनी गाली तो खानी पड़ेगी, एक दिए तो एक तो वापस खानी पड़ेगी, किंतु ब्याज माफ हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपए देना पड़ेगा ब्याज माफ, पर इसके लिए क्या कितना 100% राजयोग करना पड़ेगा, 100% करेंगे जैसे बाबा ने कहा श्रीमत, उसके अनुसार 100% करेंगे तो माफ होगा, 100% तब 52 करोड़ माफ होगा, अगर हमने आधा किया तो कितना होगा, 26 करोड़ माफ, 26 करोड़ देना पड़ेगा बाकी, है ना, 75% किया तो कितना होगा, तो भी 13 करोड़ वापस बचता है, और हमने 85% किया तो कितना होगा, 87% किया तो भी हमको कितना है, 6.5 करोड़ देना पड़ता है ना, है ना, और उसके बाद भी अगर हम और भी हिसाब लगाएं तो 92% करें तो भी हमको 3.25 करोड़ देना पड़ता है ना, पूरा माफ करना है तो 100% करना पड़ेगा, तो अंतर्मुखी का मतलब यह है जो 100% करे, ठीक है, करेंगे पक्का आज से शुरू। अब 100% राजयोग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, है ना। राजयोगी माना जो कभी भी अमृत वाला मिस ना करे, कभी भी कितना भी देर हो जाए, रात को भी 12 भी बज गए, घर में शादी भी है, किसकी मृत्यु भी हो गई हो, कितना भी देर हो गई हो, कभी भी कुछ भी हो जाए, अमृत वेला 3:30 बजे उठ के मुंह धो के फ्रेश होके फिर अमृत वेला बैठ जाए, 4 बजे बैठ जाओ, 4:15 नहीं, ठीक है, 4 बजे प्लेन में बैठ जाओ। बोर्डिंग टाइम क्या है, 4:05 पे बैठ, 4:05 प्लेन के अंदर सीट पे बैठ जाओ, बेल्ट बांध लो, है ना, ठीक है, बेल्ट कौन सी बांधनी है, दृढ़ता की बेल्ट बांधनी, ठीक है, बेल्ट बांध के बैठ जाओ, फ्लाइट उड़ेगी फिर, है ना। और उसमें भी आधा घंटा तो कम से कम ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि सूक्ष्मता में रहने का अभ्यास होना चाहिए। पर अमृत वेला कौन करेगा, कौन कर सकता है, किसको अनुभव होगा, जो सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलेगा, सुबह से लेकर रात तक। अमृत वेला ही नाम है एक्चुअली, बाबा की श्रीमत पे चलने का दिनचर्या, बाबा ने जो दिनचर्या उस पे चलने का इनाम है। जो सारा दिन नेगेटिव करेगा ना, कुछ गलत करेगा, सबसे पहले अमृत वेला वो ये बात याद आएगी, ठीक है, अमृत वेला वही बात, जो गलतियां कल दिखे होंगे ना अमृत वेला, वो इसके संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अमृत वेला सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी भी अमृत वेला मिस ना करे, ठीक है, फिर सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, ठीक है, कौन सी, कहां पर मुरली, क्लास में आके मुरली सुन, व्हाट्सएप इंटरनेट पीएम टीवी पे नहीं, पीएम टीवी हमारे लिए नहीं बनाया, बाबा के बच्चों के लिए नहीं बनाया, ये दूसरों के लिए बना है, दूसरे में ना जो ज्ञान में नहीं है ना उनके लिए हम पीएम टीवी है ना, हमारे लिए पीएम टीवी नहीं, हमारा पीएम टीवी हमारी मुरली है ना, ठीक है, हमारी पीएम टीवी हमारा मुरली, मैं कभी पीएम टीवी ऐसे खोला ही नहीं, खोलता ही नहीं कभी, हम किसी की, बाबा कहते हैं मेरे से सुनो, सिर्फ बाबा कहते हैं मेरे से सुनो, बाप जिस और बाबा का सुनाओ सुनाओ, और कुछ सुनाओ भी नहीं, सुनो भी नहीं, पर बाबा से सुना है पहले धारण कर लो, धारण करके फिर सुनो, ठीक है। बड़ी दादी कहती थी कि गुप्ता जी जब भी आपको सुनाना ना, पहले जो बाबा ने मुरली सुनाई ना उस पर पहले गहराई से मनन चिंतन मंथन सिमरण करो, जब आपकी बुद्धि में धारण हो जाए, आपके कर्म में दिखाई देने लगे तो फिर सुनाना। मैंने कहा दादी पहले सुनाया तो क्या बात है, दादी कहती नहीं फिर आपका क्या होगा, वो पॉइंट धारण ही नहीं होगा, बिना सुनाए आपने बोला ना तो धारण ही नहीं होगा, वो मुरली का पॉइंट खराब जाएगा, ठीक है, क्या समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है हमको अटेंशन करना पड़ेगा, तो ये जो है, तो पहली बात अमृत वेला, दूसरा मुरली, और मुरली भी कहां सुननी है, हाँ जी, कहां पर, सेंटर पे, सेंटर पे भी कहां सुननी है, सेंटर में सुनो, सूक्ष्म वतन में चले जाओ और बाबा की गोद में बैठ के सुनो। मुरली तो बाबा की है ना, सुनाने वाला कोई भी है, बहन है, भाई है, कोई भी बड़ी बहन है, छोटी बहन, कोई भी बहन सुनाए, पर ये भाव नहीं आज बड़ी बहन ने सुनाई, छोटी बहन ने सुनाई, इसने सुनाई, नहीं, जो भी सुना रहा है बाबा उसके तरफ शक्ति भी दे रहा है धारण करने के लिए, ठीक है। और बाबा की मुरली लेके बाबा सूक्ष्म बाबा की गोद में बैठ जाओ, वह बाबा से मुरली सुनते रहो, नींद भी नहीं आएगी और टेंशन भी रहेगा, सुनते भी रहो, बाबा का चित्र भी सामने देखते रहो और पावर भी लेते रहो और लिखते भी रहो, ताकि पूरा घंटा लगभग 45 मिनट या 50 मिनट बुद्धि में कोई और संकल्प ना आए। कोई और संकल्प आ गया तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग में खराबी हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही ना, रिकॉर्डिंग के बीच में और कोई आवाज आई तो क्या होगा, खराबी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसलिए कभी भी मैं कोशिश करता हूं, पता नहीं आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे 45 मिनट 50 मिनट बाबा की याद में जाए, बाबा की गोद में जाए, लिखता भी रहूं, देखता भी रहूं, कभी सामने देख लूं, कभी मुरली में लिख रहा हूं, कुछ बात लिख रहा हूं, मतलब बाबा की याद में, या बाबा मुझे बाबा से बात कर रहा हूं, ठीक है, राइट। तो ये अटेंशन रखनी चाहिए पूरे, ये रिकॉर्डिंग का समय है, तो ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरी बात है अटेंशन, सारा दिन अटेंशन, अटेंशन माना, अटेंशन में चार बातें, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, मन अपना रिवाइज करो, चिंतन माना चिंता लगाओ, चिंता माना चिंतन नेगेटिव पॉजिटिव है, चिंता नेगेटिव है, चिंतन माना मुझे ये बनना है। जैसे बाबा ने आज की मुरली में था ना, जैसे कल की मुरली में था हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है ना, मेरा पार्ट नहीं है। आज की मुरली में क्या था मीठे बच्चे बताओ, हा? अच्छा आज का था ना, ये तो आज का ही था, हा? मेरा पार्ट नहीं, मैं तो तुम्हें पतित से, मेरा तो पतित से पावन बनाने का हुनर है मेरा, है ना, मैं शरीर में नहीं आता। हाँ, गीत कौन सा था, मुखड़ा देख ले प्राणी जदर्पण में। तो मुखड़ा माना, मुखड़ा माना क्या, मुखड़ा माना मन, दर्पण माना दिल। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम अपना अपने देखते हैं, शाम को देखते हैं ना, मैंने क्या गलती की, चित्र लेटर लिखने बैठते हैं बाबा को, नजर नहीं आता है मैंने कुछ गलती की। क्यों, अगर दर्पण गंदा होगा, मट्टी लगी होगी तो दिखाई देगा चेहरा, नहीं दिखाई देगा ना। तो अगर दर्पण में, दिल रूपी दर्पण में अगर देहभान भरा हुआ है, देखे संबंध भरे हुए, देखे स्वभाव संस्कार भरे हुए, देखे पदार्थ भरे हुए, तो कुछ नजर नहीं आएगा। फिर मन में क्या गलत किया, नजर नहीं आएगा, कैसे विचार चले नजर नहीं आएगा, क्या बोला समझ नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो क्या कहेगा, अरे उसने, मैंने गुस्सा किया, तो उसने गलती की थी ना इसलिए गुस्सा किया, गलत थोड़ी ना है, तो ठीक है ना, मैंने उसको ऐसे किया, उसने ऐसा किया, मैंने भी कर दिया, इसमें क्या गलती, कोई गलती नहीं। क्योंकि तो बाबा को जब दिल में बिठाएंगे ना, शिव बाबा को दिल में, अपनी कॉन्शियसनेस में दिल में बाबा को बिठाएंगे, मैं आत्मा हूं एबीसीडी का अभ्यास करेंगे, तो लेटर लिखने के पहले क्या करो, एबीसीडी का अभ्यास करो, उससे दिल रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाएगा। फिर देखो मन में क्या क्या है, मैंने आज सुबह से क्या गलतियां की, तो फिर दिखाई देगा मैंने, तो दिल रूपी, तो दर्पण देख, क्या कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे जीवन में, तो मन मन में दिखाई देगा फिर आपको, फिर आप सच्चाई से दिख सकते हैं, राइट। तो पहला मनन, चिंतन, चिंतन माना मुझे बनना है, ये एक चिंतन लगाओ, ये चिंता लगाओ, और मंथन माना कैसे बनना है, राइट, मुझे बनना तो है पर कैसे बनूं, ये फिर अंदर बाबा से बातचीत शुरू करो, बाबा कैसे बनूं, क्योंकि बाबा की मुरली का हर पॉइंट में चार बातें होती हैं, एक तो बाबा की मुरली का हर पॉइंट गुह्य है, उसमें बहुत गहराई है, दूसरा वो बहुत रहस्य युक्त है, उसमें बहुत सारे सस्पेंस है, और गुह्य है, गोपनीय है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और चौथा अमूल्य है। तो ये जो चारों बातें, इसमें 700 करोड़ आत्माओं के सॉल्यूशंस हैं, वही मुरली, वही चार पेज की मुरली में 700 करोड़ आत्माओं के, जो भी पढ़ेगा उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे उसके सिर में दर्द हो रहा हो, चाहे उसकी कुछ भी तकलीफ हो रही हो, कोर्ट केस हो, कोई भी कुछ चीज हो गई, उसका सोल्यूशन उसमें दिया होगा। तो हर एक के लिए उसका अलग अलग मतलब हो सकता है, राइट, सबके लिए जैसा मतलब नहीं होगा। तो आप बाबा से बात करो, बाबा आपने कहा ना ये काम, कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं, बाबा आज आपने वरदान दिया ना ये वाला, तो मैं कैसे करूं। जैसे आज का स्लोगन था स्वपुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस, तो ये कैसे, मैं कैसे करूं बाबा, मेरे तो सारा दिन पेशेंट दिखने का काम है, मैं तो पेशेंट दिखता हूं सारा दिन, मैं तो ये काम करता हूं, तो मैं कैसे स्वपुरुषार्थ करूं, सेवा सेवा तो कर रहा हूं पर स्वपुरुषार्थ कैसे करूं। तो बाबा से बात, बाबा फिर इसमें मक्खन निकालेगा, इसको मनन किया ना मैंने, रिवाइज किया, पहले तो रिवाइज किया, फिर इसको चिंतन, बाबा मुझे ऐसे करना है, मुझे बैलेंस रखना ही है, स्वपुरुषार्थ सेवा का बैलेंस रखना है, अंदर से दृढ़ता लेके आओ, अब कैसे करूं, फिर बाबा से पूछो। बाबा कहेगा, बाबा से मैं, आज मैंने किया ये पुरुषार्थ किया, अटेंशन रखा, तो मैंने क्या बाबा से, बाबा ने क्या बताया, बच्चे स्वपुरुषार्थ माना क्या, स्व माने आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो, मुझे याद करने का पुरुषार्थ, और सेवा, सेवा क्या करते हो, दूसरे को आत्मा समझ के उनको उस हिसाब से देखो, देह समझो ही मत उसको, है ना, उसकी बीमारी क्यों आई, क्योंकि उसके अंदर 7 गुण कम हो गए, अब 7 गुण कैसे, अब तुम अपने इतना भरो कि उसको उस समय दे दो, करंट दे दो, ताकि वो ठीक तो होना शुरू हो जाए, उसको फिर कोई ना ऐसे पावरफुल उस वायुवृत्ति में स्थित होकर उसको देखो, ऐसे आत्मिक वृत्ति से उसको देखोगे तो आपके आभामंडल में आएगा, तो उसका उससे आपके ऊपर ब्लेसिंग जमा हो जाए, दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। ऐसे बाबा ने कहा मंथन, जैसे मंथन हुआ ना, मक्खन निकला, अब मक्खन जो निकल आया, अब मैं क्या करूं, जब पेशेंट देखने जाऊं, ओपीडी में पेशेंट देखूं या आईसीयू में पेशेंट देखूं, तो क्या करूं, अब उस स्थिति में पेशेंट को हाथ लगाने से पहले उसको पहले देखो, इस भाव खुद में ऐसे टिक जाऊं और फिर दूसरे को ऐसे टिक। तो क्या हुआ, सिमरन। ये सिमरन माना जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाना। अब जब मैंने कार्य में लगाया तो नया संस्कार बन गया, अब ये मेरी नई आदत बन गई, जिस भी पेशेंट को देखूं मैं उस भाव से देखूं। ऐसे आपका भी जो भी प्रोफेशन है, आप खाना बनाते हैं, घर में कपड़े धोते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, कई बहनें भी हमारी काम करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, तो जो भी काम हम करते हैं उस लगन से, उस इस पे मुरली का जो पॉइंट निकला आज, उस मुरली के उस पॉइंट को है ना बार 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 देख करके, बार बार देखते हुए हम उसको रिवाइज करते जाओ ना। जैसे 10 पॉइंट भी मुरली में, रोज एवरेज 10 पॉइंट होते हैं मुरली में, है ना, तो ये जो है आप उसको देखते जाओ तो आपका अटेंशन। नहीं तो अभी क्या होगा, जैसे अभी हम क्या करते हैं, ये तो हम पेशेंट देखते ही थक जाते हैं, अब बंधन संबंध में बदल जाएगा। ये ड्यूटी ड्यूटी नहीं लगती है, फिर हमें एंजॉयमेंट लगती है। पेशेंट आया, उसको बात की, उसे प्यार से संतुष्ट हुआ, वो मुस्कुराया जो भी था पेशेंट के, और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला, है ना, तो हमें अच्छा लगता है, थकावट नहीं होती, राइट। ऐसे मतलब हर चीज का अभ्यास इस तरह करते 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 क्या होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना आप पॉजिटिव करते जाओगे उतना आपके अंदर क्या होगा, एंडोर्फिन निकलना शुरू हो जाए। एंडोर्फिन होते हैं नेचुरल मॉर्फिन, अंदर अफीम निकलती है। एक तो अफीम बाहर से खाते हैं ना हम लोग, मॉर्फिन खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है, आप अंदर से बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, और अंदर से जैसा फील करते हैं उड़ रहे हैं, हल्के हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है। इस तो अपने अंदर ये वाली फीलिंग धारण कर लो, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे ये वाला ना, उतनी हमारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, ठीक है। तो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, अटेंशन में मनन चिंतन मंथन सिमरण, और फिर वेंटिलेशन, सोने के पहले वेंटिलेशन, मैं लेटर लिखो बाबा को, क्योंकि हमसे गलतियां होंगी, क्योंकि मैंने कहा शुरू में भी कहा ना, हमसे गलतियां करने की नेचुरल है, हमको आदत है, 2500 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं गलतियां करने का, ना पक्का हो गया, नेचुरल हो गया। अभी भी गलतियां होंगी, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना हो जाएगी, लिखो आज है यहां पे दुर्घटना हुई, है ना, लेटर लिख के फिर चार्ट भरो याद का, फिर मुरली पढ़ो दोबारा, पूरी मुरली पढ़ो, और फिर बाबा को 3 मिनट याद कर सोचो। तो ये 4 नियम हम पक्के करें, और 4 नियम वो पक्के करेगा जिसका जिसकी पहले तो शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन खाना बहुत जरूरी है, अंतर्मुखी रहने के लिए बहुत जरूरी है, आत्मा दिखाई देती रहे, आत्मा का अनुभव होता रहे, बाबा से कनेक्शन लगा रहे, एक एक संबंध की अनुभूति होते रहे, और डीप और ड्रामा, ड्रामा में जो भी हो रहा है उसमें बुद्धि ना जाए, साक्षी होकर देख सके, जो हुआ उससे भी साक्षी, जो हो रहा है वो भी साक्षी, और जो होने वाला उससे भी साक्षी, है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है शुद्ध सात्विक भोजन, अगर शुद्ध सात्विक माना जो सातों गुणों को बढ़ाने वाला हो, राइट, मतलब हम, और शुद्ध माना बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। अगर हमने रास्तिक भोजन खा लिया, पराठा पकौड़ा समोसा खा लिया, जैसे सुबह सुबह पराठा मिला, आलू का पराठा मिला, खा लिया, तो क्या होगा, आप यहां योग करने योग लगेगा नहीं, सुना आपने, 2 कप एक गिलास पूरा चाय पी ली, योग लगेगा नहीं। सिंपल रोटी है ना, सिंपल रोटी खाओ, रोटी भी मिलती है ना, पराठा भी होता है, रोटी भी बनी होती है, रोटी खा लो, पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां नहीं खाओ, सामने पड़ी हो तो भी नहीं खाओ, सुना आपने, मुश्किल काम है क्या, मुश्किल काम है, हम तो कभी नहीं खाते, हमारे घर में इतनी सारी टोलियां रखी होती है, हम टोलियां रखी होती है, इतनी सारी चीजें होती है, हम तो कभी नहीं खाते, गुलाब जामुन भी रखे हैं, अभी भी रखे हैं हमारे फ्रिज में, गुलाब जामुन रखे हैं, बर्फी रखी है, काजू की बर्फी रखी है, मैं तो कभी टच भी नहीं करता हूं, तो कभी नहीं टच करना। जो हमें, अगर हम चाहते हैं योग करना, इतनी हमने 4 दिन 5 दिन निकाले, और यहां के फिर हम पराठे पकौड़े समोसे खा रहे हैं, तो क्या मतलब है। हाँ, मैं उसके ऊपर मुझे बताता हूँ, मैं दादी से, मुझे 28 दिसंबर 1997 की बात है ना, हमारी जो प्रोग्राम की लॉन्चिंग, हार्ट का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 27 दिसंबर को, तो दादी ने 28 ओम शांति भवन में, दादी ने 28 दिसंबर को मुझे मुरली में इशारा किया, मुरलीपुरी होने के बाद गुप्ता जी मुझे मिलो, तो दादी फिर दादी के साथ मैं यहां पर आ गया, मीटिंग रूम है ना दादी का, साथ में जो बाबा कमरे के साथ पीछे पल्ली तरफ दादी का मीटिंग रूम है, तो दादी बैठ गई, दादी ने मुन्नी बहन आई, दादी का मुन्नी बहन को तुम जाओ, मैं गुप्ता जी से कुछ बात करनी, तो दादी बैठ गई, तो दादी ने पूछा हार्ट की प्रॉब्लम किनको होती है, मैंने बताया जल्दी चिंता गुस्सा करने वाले को जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते। वो दादी ने कहा आप करते हो क्या, मैंने कहा दादी कभी कभी तो हो जाता है। तो दादी कहती है अच्छा आपको होता है तो दूसरों को क्या सिखाओगे। फिर दादी ने कहा अच्छा जो हार्ट की क्या क्या खाने से बीमारी होती है, मैंने कहा दादी जो पराठा खाते पकौड़ा खाते समोसा खाते वो चाय कॉफी पीते कोल्ड ड्रिंक्स पीते नॉनवेज खाते अंडा मीट खाते है ना ऐसी चीजें खाने वाले जो होते हैं उनको ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है। अच्छा आप मीठा खाते, मैंने मीठा मिठाई खाते। दादी कहती है अच्छा आप कभी मीठा खाते हो क्या, मैं कहती गुरुवार का भोग होता है ना वो खाते हैं ना गुरुवार बाबा का भोग है ना तो खाते। कहते बाबा, दादी कहती कौन से मुरली में लिखा है कि बाबा का भोग खाना जरूरी है। दादी प्रकाशमणि कहती यहां से खाओ ना, यहां से क्यों खाते हो आप, सिंपल खाना खाओ ना। आप खाओगे दूसरे को भी खाने का दिल करेगा ना। डायबिटीज का मरीज है उसको एक हफ्ते में एक बार गलत खाना खाया भोग खाया तो सारे हफ्ता उसकी शुगर खराब हो जाएगी ना। ये दादी प्रकाशमणि के बोल हैं। फिर मैंने कहा दादी कहते अच्छा टोली खाते हो क्या, दादी आप टोली देते मैं तो खाता हूं ना, आपकी टोली आप टोली दो और बाबा टोली देता तो खाओ ना। दादी ने कहा कहां लिखा है मुरली, कहां लिखा मुरली, मुरली में कभी आता है कि टोली दो टोली खाओ। मैं दादी नहीं खानी चाहिए, नहीं कहती पहले यहां से खाओ ना आप, ऐसे करना भी थोड़ा सा नाम मात्र ऐसे करके मुंह से बाकी किसी को दे दो ना वो खुश हो जाएगा ना, दादी की दी टोली है आप क्यों खाते। मैंने दादी मुझे डायबिटीज नहीं है, कहती फिर भी तुम्हें दूसरों को सिखाना तो है ना। कैसे सिखाओगे जो तुम खुद नहीं करते दूसरों को क्या सिखाओगे, जो तुम खुद नहीं करते दूसरों को क्या सिखाओ, कैसे सिखाओगे तुम्हारे अंदर जीवन में नहीं तुम कैसे सिखाओगे दूसरों को। और फिर दादी ने एक बात मुझे और कही कि गुप्ता जी अगर आप जो है अगर खुद नहीं करेंगे दूसरों को सिखाएं दूसरों को लेक्चर देंगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको हार्ट की तकलीफ होगी, उनकी बीमारी बढ़ेंगी, डायबिटीज बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसका पाप आपको लगेगा। क्योंकि आप कह रहे हो कि ये करो और आपके कर्मों में धारणा नहीं है तो वो करेंगे नहीं, और आपने उनको कहा कि आप बाईपास भी नहीं कराओ एंजियोप्लास्टी भी नहीं कराओ और वो ना वो करेंगे ना ये करेंगे, नुकसान तो होगा ना फिर। इसलिए आप करने कहने से पहले करो, ठीक है। ये हमारी जीभ बोलती है, दादी नहीं बोलती खाओ। अच्छा तो क्यों खाना चाहिए, वो डायबिटीज वही बोलती है, डायबिटीज वाले को दिल करता है मीठा खाने को, वो मौका ढूंढता है ना मीठा खाने का, है ना। सारा हफ्ता मीठा नहीं खाएगा, गुरुवार को स्पेशल खा लेगा, बाबा का भोग है, बाबा का भोग है ना। अभी ऐसे नहीं करना। तो अगर हमें ध्यान रख सकते, मुझे बता रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की है, कई बार हम सारा कुछ कर लेते हैं, सारी धारणाएं कर लेते हैं, खान पान में धारणा नहीं करते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध सात्विक जैसा अन्न वैसा मन, संकल्प से तो क्या करोगे ना, संकल्प से योग लगेगा ना, संकल्प ही तो बीज है ना। अब संकल्प मेरे चल रहे हैं आलम, मैं संकल्प कर रहा हूं मैं आत्मा हूं बस, अब आत्मा आगे चलेगी नहीं, वहीं आत्मा रुक जाएगी, है ना। मतलब आत्मा ऊपर की तरफ जा कनेक्शन लगे मन बुद्धि ऊपर जाएगा ही नहीं, एकदम स्लो हो जाएगा। पराठा खाके फिर योग लगाओ नहीं लगेगा, है ना, पकौड़ा खाके योग नहीं लगेगा, ठीक है। इसे सिंपल भोजन रखना चाहिए, सिंपल एकदम बेसिक सिंपल भोजन रखो, है ना। दो चपाती खाने, दो चपाती तीसरी क्यों खाते हैं हम लोग, दो ही खाने में दो खाने दो ही खाओ, आज ये नहीं सब्जी बहुत स्वाद है तीन रोटी खा ली, तो दो ही खाओ ना। फिर बाबा ऐसी चेक करते थे, बाबा कोई सब्जी बहुत अच्छी बनाएंगे फिर देखते थे आज किसने ज्यादा खाई, मतलब आसक्ति में खाया ना, पेट में दो की आवश्यकता है, तीन खाई क्यों खाई, चबा चबा के खाओ। एक इंपॉर्टेंट बात है, खाने को बहुत चबा चबा खाना चाहिए। अगर हम अच्छे से खाना 100 ग्राम खाना खाया ना अच्छे से चबा के खाया तो 200 ग्राम जूस निकलेगा, पेट भर जाएगा, है ना, और आपका खाना ठीक हो जाएगा। और अगर आपने नहीं तो जल्दी जल्दी खाया तो क्या होगा, 200 ग्राम खाना खाओगे 100 ग्राम जूस निकलेगा, 300 ग्राम में पेट भरेगा। अब बहुत जल्दी दिखाओगे 250 ग्राम खाना खाओगे 100 ग्राम 50 ग्राम जूस निकलेगा, पेट 300 में भरेगा। तो इसलिए हमें चबा चबा के खाओ, है ना, चबा के खाने से क्या होगा, जूस ज्यादा नहीं, और पचेगा आराम से पचेगा, गैस नहीं बनेगी। मोटा मोटा खाना खा ले तो वो फिर गैस बनती है, एसिडिटी बनती है ना, तकलीफ, पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है। फिर अब जिधर गैस बन रही हो योग कैसे लगेगा, है ना, लगेगा। एसिडिटी बन रही है तो गैस, सिद्धर दोहराओ गैस कैसे कैसे बनेगा। तो इसलिए बाबा की याद में कभी भी मुंह खोल के खाना नहीं खाते हैं। मुंह खाना रखा, ढक्कन बंद करो और फिर अंदर अंदर खाना चबाते रहो, है ना। ठीक, कभी भी मुंह ऐसे खोल के खाना नहीं खाना चाहिए। कभी बोलना नहीं चाहिए खाना खाते समय। बोला तो कहीं क्या अंदर हवा अंदर जाएगी, तो खाने के साथ हवा भी अंदर जा रही है, तो खाने के बीच में हवा मिक्स हो जाएगी, फिर क्या होगा, खाना पचेगा नहीं। ठीक है, अभी ध्यान रखना कमलेश में ना, आप देखना जरा, रोटी अंदर, टुकड़ा अंदर और मुंह बंद, है ना, फिर खाना खाओ। ये बहुत जरूरी बात है ना। तो सात्विक भोजन नहीं खाना, तामसिक कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय कॉफी बहुत पीना, है ना, वैसे तो पीनी नहीं चाहिए चाय कॉफी, और कोल्ड ड्रिंक पीना, ये बिस्किट खाना बाजार के, आइसक्रीम खाना बाजार की, इनमें सब में तामसिक पदार्थ होते हैं। लहसुन प्याज तो आपको पता ही है, वो उत्तेजना पैदा करता है। तो ये चीजें खाना, बासी भोजन खाना, ना ये सब चीजें खाने से उत्तेजना पैदा होती है। अचार खाना, है ना, भले यहां मिलता है, कई लोग कहते हैं पांडव वन में मिलता है, शांति वन में मिलता है, भले मिलता सब कुछ है, मिलेगा सब कुछ, यहां भी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, है ना, नहीं खाना मैंने नहीं खाना, नहीं पीना मैंने नहीं पीना, फिर योग लगेगा नहीं आपका। ठीक है, पक्का, है ना। तो शुद्ध सात्विक भोजन, और फिर उसके बाद पवित्रता। पवित्रता में ठीक है, हम पवित्र ब्राह्मण पवित्र रहते हैं, बस मैं पूरी करता हूं क्लास। पवित्रता माना सबसे बड़ी बात, पवित्रता में वैध संकल्प चलना भी है पवित्रता। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बीके होके भी ऐसा करते हैं क्या, ये देखो टीचर भी ऐसे करती हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या, बाबा का बच्चा होकर भी ऐसे करता है, अरे ड्रामा में उसका पार्ट है, बाबा को पसंद है। तुम क्वेश्चन रेज करने वाले कौन हो, तुम डायरेक्टर हो ड्रामा के, हो क्या डायरेक्टर, शिव बाबा ने काम दिया क्या आपको, तो वैध संकल्प है ना। तो ये भी अपवित्रता है ब्राह्मणों के अंदर, ये वाली अपवित्रता बहुत है। ठीक है, कभी संकल्प जो चल रहा है, जो जैसा कर रहा है, जैसा भी हो रहा है, यज्ञ में भी देखो मधुबन में ऐसा होता है, मधुबन में होता है, तुम्हें किसी ने क्या प्रॉब्लम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या उससे। हमें सिर्फ बाबा को देखना है, हमें ना किसी मधुबन निवासी को देखना है, ना शांतिवन निवासी को देखना है, ना सेंटर में किसी निवासी को देखना है, हमें सिर्फ बाबा को देखना है और स्वयं को देखना है। राइट, पक्का। अगर योग पक्का चाहिए, भट्टी, योग भट्टी का मतलब क्या है, योग भट्टी का मतलब ये है, सिर्फ स्वयं को देखना, ये अंतर्मुखता है। स्वयं को देखो और बाप को देखो, किसी भी देहधारी को मत देखो, लौकिक चाहे अलौकिक। राइट, फिर लगाव भी अपवित्रता। जैसे आज की मुंडी थी ना, जो वरदान था ना आज, लगाव मुक्त, न्यारा और प्यारा, सहज योगी माना सर्व लगाव से मुक्त। तो ये जो हमें टेंशन रखना कि मुझे किसी से लगाव ना, किसी भी देहधारी से लगाव ना। ठीक है, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा बेटी, कोई भी हो, दोस्त हो, किसी से लगाव ना। हो सकता है ऐसा, इसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता, अटेंशन रखने की। जब हम सर्व संबंध बाबा से अनुभव करना शुरू कर देंगे ना, तो हो सकता है। ठीक है, जो कुछ चाहिए बाबा से मिलेगा। कई बार ये भी बात ध्यान रखने की, एक मुझे एक सुबह भाई मिले, वो पूछ रहे थे, हमें अपनी जो लोक लाज के पीछे नहीं जाना है, हमारी इनसाइड आउट अप्रोच है। अमृत वेला पावरफुल किया, मुरली ध्यान से सुनी, साथ ही मनन चिंतन मंथन किया, सिमरण किया, और रात को सोने के पहले सब कुछ बाबा को बता दिया, बाबा को मुरली पढ़ के याद करके सो गए। तो ये चार नियम पक्के कर लेंगे, अपने आप क्या होगा, इससे आपके अंदर क्या होगा, ऑरा बनता जाएगा, आभामंडल बनेगा, वृत्ति बदलेगी, वृत्ति से आभामंडल बदलेगा, आभामंडल बढ़ने से फिर क्या होगा, जो आपके पति पत्नी जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा, उनकी दृष्टिवृत्ति आपको देख के बदलेगी, आपके आभामंडल को देख के बदलेगी, आपकी एटीट्यूड को देख के बदलेगी, आपकी भावनाओं को देख के बदलेगी, तब वो परिवर्तन होंगे। वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगी, ये सोच के नहीं कभी। लोक लाज वाले कभी भी ना खुश होंगे, वो अभी खुश है, अभी नाराज हो जाएंगे थोड़ी देर में बिना बात पे। उस लोक लाज के पीछे अपना ये जन्म गंवाना नहीं है। राइट, मेरा पति नाराज होगा, मेरी बच्चा नाराज है, मेरे बेटा नाराज होगा, मेरी बेटी नाराज हो जाएगी, मेरे ये नाराज होते रहे, क्योंकि राज को पता ही नहीं है उनको, नाराज तो वो रहते ही हैं, राज का पता, हमें राज का पता है ना, है ना, हमें परेशान नहीं होना है, हम शान में रहने वाले हैं ना, तो ये टेंशन नहीं होना, ठीक है। तो ये लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, किसी के प्रभाव में नहीं आओ, लौकिक अलौकिक किसी के प्रभाव में मत आओ, ठीक है। फिर तीसरी बात सत्संग, माना बाबा और मुरली का संग, बाबा और मुरली के अलावा किसी और चीज का संग मत करो, ठीक है। और फिर चौथा दैवी गुणों की धारणा, ये चार मर्यादाएं पक्की करो, चार परहेज हैं। अगर ये चार गोली पहले हैं, अगर चार गोली कहें पहली बातों को, तो ये चार परहेज हैं, चार परहेज करोगे तो गोली काम करेगी, नहीं तो गोलियां काम नहीं करती, ठीक है। ये पक्का कर लो, इसी को बेहद की वैराग्य वृत्ति भी कहते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना इन चारों बातों से वैराग्य, दे के सर्व संबंध संपर्क, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थों से वैराग। जब इससे हमारा वैराग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, बाबा से संपूर्ण अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे एक ही टॉपिक बहुत था, दो टॉपिक नहीं रखने चाहिए थे, तो इसलिए एक ही टॉपिक क्लास पर, इसका मतलब भी बेसिकली इसलिए दोनों मैंने टॉपिक रखे थे, इनका मतलब ये दोनों का एक ही सिमिलर मतलब है, अंतर्मुखी ही बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला होगा, और इसकी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी वो संपूर्ण 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 बने में देर नहीं लगेगा, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगा, और वो सच्चा त्यागी बनेगा, वही तपस्वी है, और जो तपस्वी है उससे सेवा आप ही होती रहेगी। चीनी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, टेबल पे पड़ी चीनी का दाना कभी कहता है कि आओ मेरे को खा जाओ, चीटियां अपने आप पहुंच जाती है ना। तो बाबा का बच्चा अगर संपूर्ण बने, संपन्न संपूर्ण बने, तो उससे सेवा ना, कोई कहीं भी जाए बोले भी ना तो भी सेवा होती रहती, अपने आप चलते फिरते सेवा होती रहती, और बाबा उसको यूज करेगा, हर जगह उसको यूज करेगा, जो संपन्न संपूर्ण बनेगा सेवा आप पे होगी, ठीक है। अगर नमक का दाना कहे आओ आओ मेरे को खा लो मेरे को खा लो, चीटी आएगी क्या? तो नमक का दाना बन करके फिर सेवा तो होगी नहीं ना, ठीक है। चीनी का दाना बनो तो सेवा होगी, चीनी खाना नहीं पड़ा बनना है, ठीक है। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद सतीश भाई फॉर सच ए वाइज एंड प्रैक्टिकल ब्राह्मण लाइफ, है ना, ऐसा ही कहेंगे ना। तो मुझे एक बात याद आई सुनते सुनते, जो मैं आपको चंद लाइनों में रख रही हूँ। कहते हैं रिश्ता बाबा से ऐसा निभाओ, अपना समय बाबा और याद की सेवा में बिताओ, ऐसी रूहानियत भर लो अपने जीवन में, जो कोई भी मिले आपको तो आपको कहे हमें भी अपने बाबा से मिलाओ, हमें भी अपने बाबा से मिलाओ। तो यही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो दूसरों को इंस्पायर और एनकरेज करेगी। थैंक यू सतीश भाई, ओम शांति।